काम मुकम्मल हो गया है। अल मसीह की मौत। यूहन्ना की अंजील 19 आयत 16 से 42 तक। यहूदी रहनुमाओं के उकसाने पर रोमी गवर्नर पिलातुस ने हुक्म दिया कि ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाए। तब उसे सलीब पकड़ा दी गई और फौजी उसके साथ चल पड़े। दूसरी अनाजील इसके गवाह हैं कि ईसा मसीह कोड़ों के बायस काफी कमजोर हो गया था। रास्ते में उसकी ताकत जवाब दे गई। तब फौजियों ने एक गुजरने वाले को ये लकड़ी उठाकर ले जाने पर मजबूर किया। चलते चलते वो शहर से निकलकर सजाए मौत की जगह पर पहुंच गए। जगह का नाम खोपड़ी था। ये शहर की चारदीवारी के करीब ही थी जहां से लोग तमाशा देख सकते थे। वहां फौजियों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। उसके बाएं और दाएं हाथ उन्होंने दो मुजरिमों को मसलूब किया। मसलूब करने का क्या तरीका था? फौजी हाथों और पांव में बड़े कील ठोंक कर मुजरिम को सलीब से लटका देते थे। इतने में पिलातुस ने एक तख्ती बंधवाकर उसे ईसा मसीह की सलीब पर लगवा दिया। तख्ती पर लिखा था, ईसा नासरी, यहूदियों का बादशाह। बहुत से यहूदियों ने ये पढ़ लिया क्योंकि ये मकाम शहर के करीब था और ये बात रामी, लातीनी और यूनानी जबानों में लिखी थी। ये देखकर रानुमाए मामों ने एतराज किया, यहूदियों का बादशाह ना लिखें, बल्कि ये कि इस आदमी ने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया। पिलातुस ने जवाब दिया, जो कुछ मैंने लिख दिया सो लिख दिया। पिलातुस क्यों अड़ा रहा? पिलातुस तो जालिम था और उसे उन्हें दिक्कत पहुंचाने में मजा आता था, लेकिन अनजाने में उसने इस तख्ती से एक गहरी हकीकत का ऐलान किया। उसने किस हकीकत का ऐलान किया? ये कि ईसा मसीह सचमुच बादशाह है। वो इस दुनिया में आया ताकि पहले यहूदियों और फिर पूरी दुनिया का बादशाह बने। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने के बाद फौजियों ने उसके कपड़े लेकर चार हिस्सों में बांट लिए, हर फौजी के लिए एक हिस्सा। ये भी एक रोमी रिवाज था, लेकिन चोगा बेजोड़ था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुना हुआ एक ही टुकड़े का था। इसलिए फौजियों ने कहा, आओ इसे फाड़कर तकसीम ना करें, बल्कि इस पर कुरा डालें। यूं जबूर की ये पेशगोई पूरी हुई। उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर कुरा डाला। इस पेशगोई का जिक्र कहाँ हुआ था? ये पेशगोई जबूर की किताब 22 आयत 18 में पाई जाती है। ये जबूर अलमसीह की तकलीफ दे मौत की पेशगोई करता है। कुछ औरतें ईसा मसीह की सलीब के करीब खड़ी थीं। उसकी माँ, उसकी खाला, क्लोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलेनी। ईसा मसीह ने अपनी माँ को उस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे प्यारा था। उसने कहा, ऐ खातून, देखें आपका बेटा ये है। उस शागिर्द से उसने कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से उस शागिर्द ने ईसा मसीह की माँ को अपने घर रखा। ये कौन सा शागिर्द था जो उसे प्यारा था? बेशक ये यूहन्ना रसूल था जिसने अंजील का ये बयान लिखा। उसने अपने नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी याहया बपतिस्मा देने वाले की सी सोच रखता था, जिसने फरमाया था कि मसीह बढ़ता जाए जबकि मैं घटता जाऊं। वो नाम दाम कमाने के चक्कर में नहीं आना चाहता था। ईसा मसीह ने मरियम और शागिर्द से ये बात क्यों की? मौत के रूबरू भी उसे मरियम की फिक्र थी। वो चाहता था कि ये शागिर्द उसकी देखभाल करे। इसके बाद جب عیسیٰ مسیح نے جان لیا کہ میرا مشن تکمیل تک پہنچ چکا ہے تو اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس سے بھی زبور کی ایک پیش گوئی پوری ہوئی۔
کون سی پیش گوئی پوری ہوئی؟
ایک زبور میں لکھا ہے، انہوں نے میری خوراک میں کڑوا زہر ملایا، مجھے سرکہ پلایا جب پیاسا تھا۔ زبور کی کتاب 69 آیت 21۔ یوحنا رسول یہ بات کیوں بیان کرتا ہے؟ پہلے وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ان تمام دکھی باتوں سے اس پر زور دینا چاہتا ہے کہ مسیح نے سچ مچ سخت دکھ اٹھایا۔ صلیبی موت کے کچھ سال بعد چند ایک غلط استاد کہنے لگے تھے کہ ایسی عظیم ہستی دکھ اٹھا نہیں سکتی۔ ان کے خیال میں وہ صرف دیکھنے میں دکھ اٹھا رہا تھا۔ یوحنا رسول فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، خدا کے فرزند نے انسان بن کر ہماری جگہ دکھ سہا تاکہ ہمیں نجات دے کر اپنی بادشاہی میں شامل کرے۔ لازم تھا کہ وہ پورے طور پر خدا بھی ہو اور انسان بھی۔ اگر وہ صرف خدا ہوتا تو وہ اپنی جان انسان کی جگہ نہ دے سکتا، اور اگر وہ صرف انسان ہوتا تو انسان کو اس کی قربانی سے کوئی مطلب نہ ہوتا۔ یوحنا رسول کہنا چاہتا ہے، یہ بات غلط ہے کہ مسیح صرف خدا ہے، وہ پورے طور پر انسان بھی ہے۔ میں نے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ موت تک دکھ اٹھا رہا تھا۔ میرے دوست، یہ بات سچے ایمان کا بنیادی ستون ہے۔ سچا شاگرد وہی ہوتا ہے جو یہ بات مانے۔ سچا شاگرد جانتا ہے کہ میں اپنی نجات خود حاصل نہیں کر سکتا، صرف خدا کا فرزند جو پورے طور پر خدا اور پورے طور پر انسان ہے مجھے یہ نجات دے کر نور میں لا سکتا ہے۔ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس بنیادی سوچ سے ہمارا ایمان دنیا کی ہر دوسری سوچ سے فرق ہے۔ نجات ملنے کے لیے ہمیں پہلے ہتھیار ڈال کر ماننا پڑتا ہے کہ اے مسیح، تو ہی سب کچھ ہے، میں اپنی ہی طاقت سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، تیرا ہی نور مجھے بدل سکتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بات نہیں مانتے؟ میرے عزیز، اپنے ارد گرد دیکھو، کیا ایک نظر ثابت نہیں کرتی کہ سب کے سب ٹیڑے میڑے ہیں، سب کے سب گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ بات الگ کہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک اور اچھا انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنا جھوٹ کیوں نہ بولے، کتنی بے ایمانی کیوں نہ کرے۔ جتنا کوئی خدا کی قسم کھائے اتنا ہی وہ مشکوک نکلتا ہے۔ جتنا کوئی کر دکھائے کہ میں بڑا فرشتہ ہوں اتنا ہی وہ ہوتے ہوتے شیطان ثابت ہوتا ہے۔ صرف اور صرف خدا ہماری حالت بدل سکتا ہے۔ صرف عیسیٰ مسیح کی سچائی، اس کا نور، اس کا ابدی پانی اور ابدی روٹی ہم میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف عیسیٰ مسیح ہم میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کوششیں بکواس ہی ہیں۔ صرف وہ جو اچھا چرواہا ہے ہم میں پکی تبدیلی لا سکتا ہے۔ قریب میں کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا۔ لوگوں نے ایک سپنج سرکے میں ڈبو کر اسے زوفے کی شاخ پر لگا دیا اور اٹھا کر مسیح کے منہ تک پہنچایا۔ جو ابدی زندگی کا سر چشمہ ہے اسے گھٹیا قسم کا سرکہ پلایا گیا۔ یہ سرکہ پینے کے بعد وہ بول اٹھا، کام مکمل ہو گیا ہے، اور سر جھکا کر اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کون سا کام مکمل ہو گیا تھا؟ نجات کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ ईसा मसीह को दुनिया में भेजा गया था ताकि वो मौत और गुनाह पर फतह पाए, इंसान को नूर में लाए। उसे दुनिया में भेजा गया था ताकि वही सजा उठाए जो इंसान को उठानी थी। जो काम इंसान कर नहीं पाता वो उसने किया। जो उस पर ईमान लाता है उसके गुनाह मिटाए जाते हैं और वो खुदा को मंजूर हो जाता है। यूं मसीह की मौत उसकी अनोखी खिदमत का उरूज थी। ऐसा काम दुनिया नहीं समझ सकती। उसकी नजर से ये हस्ती फेल हो गई। सिर्फ वो जो ईमान लाया है इस काम की कदर कर सकता है। ये बात कहने के बाद ईसा मसीह ने क्या किया? उसने अपनी जान अपने बाप के सुपुर्द की। इससे हम क्या सीख सकते हैं? मरते वक्त हम भी जो उसके शागिर्द हैं अपनी जान उसके सुपुर्द कर सकते हैं। तब हम सीधे उसकी गोद में आ जाएंगे जो हमारा अच्छा चरवाहा है। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी भेड़ें मौत के पार भी महफूज रहती हैं। तैयारी का दिन यानी जुमा था और अगले दिन ईद फसा का आगाज था। इसलिए यहूदी नहीं चाहते थे कि लाशें अगले दिन तक सलीबों पर लटकी रहें। उन्होंने पिलातो से गुजारिश की कि वो उनकी टांगे तुड़वा कर उन्हें सलीबों से उतारने दे। टांगे तुड़वाने से क्या होता था? टांगे तुड़वाने से जिस्म को पांव से सहारा नहीं मिलता था और दम जल्द ही घुट जाता था। तब फौजियों ने दूसरे दो मुजरिमों की टांगें तोड़ दी, पहले एक की फिर दूसरे की। जब वो ईसा मसीह के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो फौत हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें ना तोड़ी, लेकिन तसल्ली पाने के लिए कि वो सचमुच मर गया है, एक ने नेजे से उसका पहलू छेद दिया। जख्म से फौरन खून और पानी बह निकला। खून और पानी बह निकलने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो सचमुच मर चुका था। साइंसदान कहते हैं कि जो इंसान थोड़ी देर पहले मर गया हो उसके पहलू से खून और पानी निकल सकता है। जिंदा इंसान से सिर्फ खून निकलता है और कुछ देर से मरे हुए इंसान से थोड़ा ही निकलता है। यूहन्ना रसूल फरमाता है, जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो हकीकत बयान कर रहा है और उसकी गवाही का मकसद ये है कि आप भी ईमान लाएं। यूहन्ना की अंजील 19 आयत 35। ये गवाह कौन था? बेशक ये गवाह यूहन्ना रसूल था जो अपने आका की सलीब के करीब ही खड़ा था। वो इस पर इतना जोर क्यों देता है कि मैं इस मौत का गवाह हूं? इसका जिक्र हो चुका है कि कुछ गलत उस्ताद इनकार करने लगे थे कि खुदा का फर्जंद दुख उठा सकता है। उनका कहना था कि ईसा मसीह नहीं मरा। इसीलिए यूहन्ना रसूल इस पर भी जोर देता है कि मरियम दूसरी जानी पहचानी औरतों समेत सलीब के बिल्कुल करीब थी जब ईसा मसीह मर गया। दूसरी अनाजील इसके गवाह हैं कि और औरतें भी कुछ दूर खड़ी सारा मामला देखती रहीं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से लोग शहर की मोटी मोटी चारदीवारी पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि ये चारदीवारी नजदीक ही थी। ये चारदीवारी इतनी नजदीक थी कि चारदीवारी पर खड़े लोग सलीब की तख्ती पर लिखी बात पढ़ सकते थे। यूहन्ना के बयान से साफ जाहिर होता है कि ईसा मसीह के लिए बचना नामुमकिन ही था। सारा इंतजाम रोमी फौजियों के हाथ में था और सलीब पर यूं कीलों से लटकाने से चांस ही नहीं था कि वो बच जाए। यूहन्ना फरमाता है कि मेरी गवाही सच्ची है, मैं जानता हूं कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। सच्चाई की ये बात किसकी याद दिलाती है? ये ईसा मसीह की याद दिलाती है जो सच्चाई का बादशाह है और जिसने पिलातुस के सामने इस सच्चाई, इस ठोस वफादारी पर जोर दिया था। सच्चे शागिर्द को इससे पहचाना जाता है कि वो सच्चाई बोलता है। यूहन्ना रसूल की गवाही का क्या मकसद है? मकसद ये है कि सुनने और पढ़ने वाले ईमान लाए। इंजील का पूरा मकसद यही है कि इंसान खुदा के फर्जंद ईसा मसीह पर ईमान लाकर नजात पाए। ये बात इतनी अहम क्यों थी कि मसीह के पहलू से खून और पानी बह निकला? यूहन्ना इसका जवाब देता है। वो फरमाता है, ये यूं हुआ ताकि कलामी मुकद्दस की ये पेशगोई पूरी हो जाए, उसकी एक हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। कलामी मुकद्दस में ये भी लिखा है, वो उस पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। यूहन्ना की अंजील 19 आयत 36 और 37। यहां यूहन्ना दो पेशगोयां बयान करता है जो पूरी हुई। इन दो पेशगोयों का क्या मतलब है? पहली बात, मसीह नजात देने वाला लेला है। मसीह नजात देने वाला लेला है। पहली पेशगोई खुरूज की किताब में लिखी है। वहां लिखा है, ये खाना एक ही घर के अंदर खाना है, ना गोश्त घर से बाहर ले जाना, ना लेले की किसी हड्डी को तोड़ना। तौरेत खुरूज की किताब 12 आयत 46। ये किस किस्म का खाना है? ये वो खाना है जो इसराइलियों ने मिस्र से निकलने से पहले पहले खाया। जब मिस्र के बादशाह ने उन्हें छोड़ने से इनकार किया तो खुदा ने फरमाया कि मैं मिस्र के हर पहलौठे को मार डालूंगा, लेकिन मेरी कौम इससे बच सकती है। बचने का ये तरीका है, हर घराना एक लेला ज़बह करे, फिर जूफे का गुच्छा लेले के खून में डबोकर वो ये खून चौखट पर लगा दे। जब हलाक करने वाला फरिश्ता वहां से गुजरेगा तो वो ये खून देखकर ऐसे घर के पहलौठों को छोड़ेगा। लेले को उसी रात भून कर खाना है, लेकिन उसकी हड्डियों को मत तोड़ना। बाद में ये खाना हर साल मनाया जाता था। ईद का नाम फसा की ईद थी। इसी ईद के पहले दिन ईसा मसीह मसलूब हुआ। जब वो सलीब पर लटका हुआ था उस वक्त शहर में ईद के लेले ज़बह किए जा रहे थे। ये बात के लेले की हड्डियां तोड़ी नहीं जाती थी किस तरह ईसा मसीह में पूरी हुई? ईसा मसीह फसा का हकीकी लेला है। लेले की तरह उसकी हड्डियां तोड़ी ना गईं, हालांकि दूसरों की टांगें तोड़ी गईं। एक और बात भी इस तरफ इशारा करती है, जूफे की शाख पर स्पंज लगाकर उसे सिरका पिलाया गया। ये जूफा उस जूफे के गुच्छे की तरफ इशारा है जिससे घर के चौखट पर खून लगाया जाता था। गर्ज, ईसा मसीह वो हकीकी लेला है जिसका खून इलाही अदालत से छुड़ाता है। दूसरी बात, मसीह पाक करने वाला चश्मा है। मसीह पाक करने वाला चश्मा है। दूसरी पेशगोई जकरिया नबी की है। उसमें खुदा ने फरमाया, मैं दाऊद के घराने और यरूशलम के बाशिंदों पर मेहरबानी और इल्तमास का रूह डालूंगा, तब वो मुझ पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा है, और वो उसके लिए ऐसा मातम करेंगे जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए। ज़करिया की किताब 12 आयत 10। नबी वो जमाना बयान कर रहा है जब इसराइल अल मसीह को पहचान लेगा, तब वो उसका मातम करेंगे जिसे उन्होंने छेदा था। फिर नबी फरमाता है, उस दिन चश्मा खोला जाएगा जिसके जरिए वो अपने गुनाहों और नापाकी को दूर कर सकेंगे। ज़करिया की किताब 13 आयत 1। मतलब है के उस लेले से एक चश्मा खोला गया जिसके जरिए हर ईमान लाने वाले के गुनाहों और नापाकी को दूर किया जाएगा। गर्ज जब खून और पानी उसके पहलू से बह निकला तो इससे एक गहरी हकीकत जाहिर हुई। मसीह वो लेला है जिसका खून हमें इलाही अदालत से छुड़ाता है। साथ साथ मसीह अबरी जिंदगी का वो चश्मा है जिसका पानी हमारे गुनाहों और नापाकी को दूर करता है। बाद में अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने पिलातुस से मसीह की लाश उतारने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वो आया और लाश को उतार लिया। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ कौन था? दूसरी अनाजील इसके गवाह हैं कि ये यूसुफ यहूदी अदालत आलिया का अमीर और इज्जतदार रुकन था। वो मसीह का शागिर्द भी था मगर खुफिया तौर पर, क्योंकि वो यहूदी रहनुमाओं से डरता था। वो मसीह को सजाए मौत देने के खिलाफ था। अब उसने लाश को दफना कर बड़ी मर्दानगी दिखाई। निकोदेमस भी साथ था। निकोदेमस कौन था? वो एक इज्जतदार आलिम था जो ईसा मसीह से रात के वक्त मिला था। एक मौके पर जब यहूदी रहनुमा मसीह के खिलाफ बातें करने लगे तो उसने उसका दिफा किया था। ये दो जाने पहचाने आदमी भी इसके पक्के गवाह थे कि ईसा मसीह सचमुच मर गया था। निकोदेमस अपने साथ मुर और ऊद के तकरीबन 34 किलोग्राम खुशबू लेकर आया था। सिर्फ अमीर आदमी ये खरीद सकता था। जनाजे की रसूमात के मुताबिक उन्होंने लाश पर खुशबू लगाकर उसे पट्टियों में लपेट दिया। लेकिन लाश को कहाँ दफन करना था? सबत यानी हफ्ते का दिन करीब था, क्योंकि यहूदी हिसाब से वो जुमे की शाम से शुरू होता था। उस दिन लाश को कहीं उठाकर ले जाना मुश्किल था। खुशकिस्मती से सलीबों के करीब एक बाग था और बाग में एक नई कब्र थी जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। ये कब्र कैसी बनी थी? ये कब्र चट्टान में तराशा हुआ गार यानी गुफा थी जिसकी एक दीवार में एक किस्म की बड़ी शेल्फ तराशी गई थी। इसी शेल्फ पर लाश को रखा गया। फिर बड़ा पत्थर गार के मुंह पर लुढ़काया गया। तो भी यहूदी रहनुमा मुतमइन ना थे। उस पर मुहर लगाकर उन्होंने कब्र पर पहरेदार मुकर्र किए। उन्हें डर था के शागिर्द लाश को छीन लेंगे। क्या इंजील की इस जगह पर यूहन्ना रसूल को खत्म शुद नहीं लिखना चाहिए था? ईसा मसीह गुजर गया था। शागिर्द डर के मारे बिखर गए थे। जो लोग पहले उसकी तारीफ में नारे लगाते वो अब हिम्मत हार कर अपने अपने घर चले गए थे। क्या इस जगह पर खत्म शुद लिखना नहीं चाहिए था? इस सवाल का जवाब अगले बाब में मिलेगा। यूहन्ना की अंजील 19 आयत 16 से 42 तक। चुनांचे वो ईसा को लेकर चले गए। वो अपनी सलीब उठाए शहर से निकला और उस जगह पहुंचा जिसका नाम खोपड़ी अरामी जबान में गुलगुता था। वहां उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। साथ साथ उन्होंने उसके बाएं और दाएं हाथ दो और आदमियों को मसलूब किया। पिलातुस ने एक तख्ती बनवाकर उसे ईसा की सलीब पर लगवा दिया। तख्ती पर लिखा था, ईसा नासरी, यहूदियों का बादशाह। बहुत सी यहूदियों ने ये पढ़ लिया क्योंकि मसलूबियत का मकाम शहर के करीब था और ये जुमला रामी, लातीनी और यूनानी जबानों में लिखा था। ये देखकर यहूदियों के रहनुमा इमामों ने एतराज किया, यहूदियों का बादशाह न लिखें, बल्कि ये कि इस आदमी ने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया। पिलातुस ने जवाब दिया, جو کچھ میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا۔ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے بعد فوجیوں نے اس کے کپڑے لے کر چار حصوں میں بانٹ لیے، ہر فوجی کے لیے ایک حصہ۔ لیکن چوغا بے جوڑ تھا، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بنا ہوا ایک ہی ٹکڑے کا تھا، اس لیے فوجیوں نے کہا، آؤ اسے پھاڑ کر تقسیم نہ کریں بلکہ اس پر کرا ڈالیں۔ یوں کلام مقدس کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ انہوں نے آپس میں میرے کپڑے بانٹ لیے اور میرے لباس پر کرا ڈالا۔ فوجیوں نے یہی کچھ کیا۔ کچھ خواتین بھی عیسیٰ کی صلیب کے قریب کھڑی تھیں، اس کی ماں، اس کی خالہ، کلوپس کی بیوی مریم اور مریم مگدلینی۔ جب عیسیٰ نے اپنی ماں کو اس شاگرد کے ساتھ کھڑے دیکھا جو اسے پیارا تھا، تو اس نے کہا، اے خاتون، دیکھیں آپ کا بیٹا یہ ہے۔ اور اس شاگرد سے اس نے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس وقت سے اس شاگرد نے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر رکھا۔ اس کے بعد جب عیسیٰ نے جان لیا کہ میرا مشن تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس سے بھی کلام مقدس کی ایک پیش گوئی پوری ہوئی۔ قریب میں کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا، انہوں نے ایک اسپنج سرکے میں ڈبو کر اسے زوفے کی شاخ پر لگا دیا اور اٹھا کر عیسیٰ کے منہ تک پہنچایا۔ یہ سرکہ پینے کے بعد عیسیٰ بول اٹھا، کام مکمل ہو گیا ہے، اور سر جھکا کر اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ فصح کی تیاری کا دن تھا، اور اگلے دن عید کا آغاز اور ایک خاص سبت تھا، اس لیے یہودی نہیں چاہتے تھے کہ مصلوب ہوئی لاشیں اگلے دن تک صلیبوں پر لٹکی رہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیلاتو سے گزارش کی کہ وہ ان کی ٹانگیں توڑوا کر انہیں صلیبوں سے اتارنے دے۔ تب فوجیوں نے آ کر عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیے جانے والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں، پہلے ایک کی پھر دوسرے کی۔ جب وہ عیسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ اس کے بجائے ایک نے نیزے سے عیسیٰ کا پہلو چھید دیا۔ زخم سے فوراً خون اور پانی بہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، اور اس کی گواہی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں۔ یہ یوں ہوا تاکہ کلام مقدس کی یہ پیش گوئی پوری ہو جائے، اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہیں جائے گی۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، وہ اس پر نظر ڈالیں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد میں ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے پیلاتو سے عیسیٰ کی لاش اتارنے کی اجازت مانگی۔ یوسف عیسیٰ کا خفیہ شاگرد تھا، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتا تھا۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ آیا اور لاش کو اتار لیا۔ نکدیمس بھی ساتھ تھا، وہ آدمی جو گزرے دنوں میں رات کے وقت عیسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ نکدیمس اپنے ساتھ مر اور عود کی تقریباً 34 کلو گرام خوشبو لے کر آیا تھا۔ یہودی جنازے کی رسومات کے مطابق انہوں نے لاش پر خوشبو لگا کر اسے پٹیوں سے لپیٹ دیا۔ صلیبوں کے قریب ایک باغ تھا، اور باغ میں ایک نئی قبر تھی جو اب تک استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس کے قریب ہونے کے سبب سے انہوں نے عیسیٰ کو اس میں رکھ دیا، کیونکہ فصح کی تیاری کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز تھا۔